आज अच्छा यही गीता का ये अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद में फिर अभी कर्म हम करें सत्कर्म करें फिर भगवान को अर्पित कर्म करें इसके बाद में निष्कर्म हो इसके बाद में चित्त शुद्धि होने पर ज्ञान योग आए ज्ञान योग के बाद में फिर भक्ति योग आएगी लंबा प्रोसेस यही उनको छह से योगदान देते उनको आपका कल्याण है। पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षिते। जहाँ पसारा वहाँ पर बैठा था एक सज्जन मिले कर्मवादी कर्म करो कर्म करो कर्म करो कर्म में ही जीवन की सफलता है। गीता में भी कर्मवाद का ही की बात आई है सब कर्म करना चाहिए अभी उसमें बात बतलाए उन्होंने कर्म काम फल नहीं चाहेंगे कर्म करेंगे गीता का यही बात करते कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के लिए भी कहा क्योंकि उनके उपदेशों के बाद में कृष्ण ने अर्जुन ने युद्ध किया ये युद्ध करना ऊपर से स्कूल मोटी बुद्धि वाले लोगों को ऐसा ही दिखता है मोटी बुद्धि वाले और जिनका विचार खुद सूक्ष्म है कुछ विचार कर सकते हैं उनके लिए कुछ बात दूसरी आप लोग कर्ण का नाम सुने होंगे महाभारत युद्ध के पहले उसकी मैया उनके पास में गई कुंती रात में मिली तो मैं उनको देख करके जो उनके घर में आई हूँ तो कुंती जी को प्रणाम किया कुछ आसन देकर के उनकी पूजा की। कुंती जी ने कहा कि बेटा तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी मैया हूँ जानता तो हूँ किंतु तुमने तो जन्म होने के साथ ही साथ हमें फेंक दिया इसलिए हमें जो पाला पोसा बड़ा किया वही हमारी मैया और बाप ये तो नीति है ना जगत की नीति ऐसे ही होती है इसलिए तुमको माँ जानने पर भी हमको जिसने पाला पोसा बड़ा किया जिन्होंने हमारे जीवन में उपकार किया हमारी शादी इत्यादि कराई जिन्होंने हमको प्रतिष्ठित किया वही हमारे माता पिता है विशेष करके मैं द्रोणाचार्य के पास में गया था उनको धनुष देव की शिक्षा दी गई उस समय अपने प्रैक्टिस अपने कर्मों से धनुष बाण मैंने सीखा था जैसे एक क्लब जो सीखा था अर्जुन दिखला रहे थे बाण में कैसे पारंगत हैं युद्ध युद्ध से दिख रहे हैं कर्ण ने वैसा ही दिख रहा है सब लोग अत्यंत आश्चर्य व्यतीत हो गए उनको कुछ थोड़ी सी विद्या थी जो नहीं मिली थी जैसे ब्रह्म विद्या ब्रह्मास्त्र उनका छोड़ नाम इत्यादि नहीं मिला था इसलिए वो द्रोणाचार्य से सीखना चाहते थे। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को भी सिखाया था, ब्रह्मास्त्र चलाना फिर को लौटाना नहीं सिखाया था। और अर्जुन को क्या किया था, जो कुछ था अपना सर्वस्व उनको दिया था, कर्ण को नहीं दिया। उस समय में उन्होंने कहा, जब तुम क्षत्रिय नहीं हो, मैं अपने नहीं देख, तुमको आत्मसंयम में, यदि अंततः तुम कोई राजा इत्यादि होता, क्षत्रिय होता तो देख। उस समय दुर्योधन ने क्या किया, अभी हमारा अंग देश का राज्य उसको मैंने दे दिया और उसको राज्य अभिषेक सबके सामने में कर दिया। उसने देखा जितना दूर है ये, पांडवों से लड़ाई होगी जरूर, इसलिए अपने पक्ष में उसको करने के लिए अंग राज्य दे करके और उसे मित्रता लगा दी। कर्ण उसका ऋणी हो गया, सबसे दुर्योधन जो कहता है वही मानता है। इसलिए अपने मैया से कहा, मैया तुम्हारा बेटा तो है, तुम जो आई है किस लिए, अब जब काम पर है तब जन्म हुआ तो हमको फेंक क्यों दिया, तुमने तो पालन पोषण नहीं किया, किंतु सूत ने हमारा पालन पोषण किया और अंत में महाराज दुर्योधन ने हमारी सहायता की। आज मैं सब लोगों के साथ बीच में बैठा हूँ, लोग मुझे आदर करते हैं, तुम क्या चाहती है बतलाओ। तो ये मैं चाहती हूँ कि तुम हमारा ब्याह देता है सबसे, तुम लौट आओ हमारे साथ, ये युद्ध होगा। अब तो युद्ध की तारीख भी निश्चित हो गई है, इसलिए तुम हमारे पांचों बेटे तुमको सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिए तुम्ही को राजगद्दी दे, तुम ही राजा होगा। उसने कहा कि मैया एक बात है, अभी युद्ध होने दो, यदि युद्ध में मैं मारा गया तो जिसे राजगति पर बैठेंगे और अर्जुन तुम्हारा पुत्र ही है, और अर्जुन ने हमें यदि मार दिया, जिस उन्होंने अर्जुन को मैं मारूंगा तो मैं तुम्हारे पक्ष में आकर के अर्जुन के स्थल पर मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, और यदि अर्जुन ने हमें मार डाला तो हमें मार डाला, तुम्हारे पांच के पुत्र पांच पुत्र रहेंगे ही। जागतिक नीति जागतिक कर्म में उसकी बड़ी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा थी, उसे बड़ा कर्मी नहीं हो सकता, माता के बचने को भी छुड़ा दिया। यहाँ तक कि कृष्ण उनके पास में आए एकदम एक क्षण में, अब यही दूसरे दिन युद्ध होने वाला था, कृष्ण उसके पास में आए, बहुत सी बातें उसको समझाया, बहुत बातें समझाया, समझाने के बाद बोले आपका अभिप्राय क्या है साफ करिए। तो मैं चाहता हूँ कि पांडवों के पक्ष से युद्ध करते युद्ध, वो धर्म के पक्ष में, ये अधर्म है, मैं तो मैं जानता हूँ अधर्म है, किंतु मैं इनका इनको नहीं छोड़ सकता किसी भी स्थिति में। अब तो ये युद्ध होना है, या तो अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा, दोनों में कोई एक ही मरेगा, लेकिन ऐसा नीति बात है। अब ये तो नीति की बात थी, धार्मिक कैसा कर्मी कैसा, सब कर्मी युद्ध होने के पहले या युद्ध हो रहा था, कर्ण पर्व आने वाला था, भीष्म पिताजी मारे गए मैंने वो सत्यज्ञा पर, और द्रोणाचार्य मारे गए, इसके बाद में कर्ण सेनापति बना। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं कल मारूंगा अर्जुन को, जरूर मारूंगा। इंद्र जी आए उनके पास में, कर्ण के पास, कुछ ने प्रेरणा दिए जाओ उसके पास जाकर के, तो ब्राह्मण के गरीब ब्राह्मण के रूप में आए और हाथ जोड़ करके कर्ण के सामने खड़े हो गए। उसने अपने आसन से उठ करके ब्राह्मण को प्रणाम किया, कर्ण की धूली ली, बोले ब्राह्मण देवता मैं सब समय जीवन भर उनका आदर करता हूँ, आपको क्या चीज के जोर से बोलिए, आप संकल्प लें और तब मैं आपसे मांग, क्योंकि आप संकल्प लेने के बाद में मुकर नहीं सकते हैं, अभी मुकर सकते हैं, ठीक है संकल्प लीजिए।
आपके जो कवच और कुंडल हैं, जो जन्म से ही आप लेकर के आए, कवच किसको कहते हैं, कुंडल किसको कहते हैं? कवच वह होता है जो इन हाड़ों के बीच में वो लगा रहता है, जो बांस छेद करके भीतर नहीं जाएगा आदमी मरेगा, जब तक यहाँ नहीं लगेगा तो मरेगा। और उसका जब लोग ऊपर से पहनते थे लोहे के कवच, और उसका कहता था जन्म के साथ ही उसका लगा हुआ, इसलिए उसका मरना बड़ा भारी शक्ति नहीं मर सकता। और कुंडल कैसा, कुंडल किस लिए रखते थे, सुबह के लिए भी नहीं, लटकता हुआ रहता था जिससे कि गले को न काट सके, दोनों तरफ से गले की रक्षा कर सके, इसलिए वो मांग रहा कौ कुंडल मिलने से ही अर्जुन से मार रहा है। और ये ठीक है, तलवार लेकर के अपने कान को काट करके उसमें से कुंडल निकाल दिया और छाती को यहाँ से काट काट करके हड्डियों में से और उसे निकाल करके दोनों उसको दिए। ये है सब कर्म, नीति परायण और कर्म, इसे बढ़ा करके दानी और कर्मी क्या हो सकता है। कुंडल लेकर के बड़े खुश हुआ, लेकर के जब चल पड़े तो अब उनका विमान ऊपर चले ही नहीं, सोचा कि हमने ये दुष्कर्म किया, इसे कुछ कर देना है, कुछ दे करके तब चल उसे जाकर के फिर बोले। आप कैसे आए ब्राह्मण देवता, हंसने लगे ये तो इंद्र है, समझ गए आप कैसे पधारे पुनः, आपको ले लिया आपने, तो इसलिए कि मैंने अधर्म किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब इसके बदले मुझे कुछ दे करके तब जाना है, तब मैं जाऊंगा। कल ने कहा कि मेरा हाथ ऐसा कभी नहीं हुआ, सब समय ऐसा रहा है, मैंने क्या दान लेने किया, कभी दान लेने आज तक नहीं लिया तो आज से कैसे दान लें, कर्मी देखिए कैसा। उन्होंने कहा मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कि आप हमसे दान दीजिए, ये भीख हमको दीजिए, यही आपसे मांग रहा हूं, बातों में उलझा करके। और फिर वो अच्छा तो जब देना है तो अपनी शक्ति हमें दे दीजिए, वज्र अभी इन पर तो पड़े मस्ती भी है, कब कुंडल तो उसका ले लिया मैंने, क्योंकि ये अब शक्ति दे रहा हूँ उस पर, जिस तक छोड़ेगा ये जरूर मरेगा, कोई रक्षा नहीं करते, अब तो लेने से देने पड़ गए। उन्होंने कहा जैसा अब कृष्ण हाथ जैसा करेंगे करें, अब अधिक सोचने की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने किया किया ये शक्ति मैंने वज्र दे दिया। उन्होंने कहा जिसे जैसे एक बार चलेगा और जिसको चलाएंगे उसका प्राण जरूर हरण करेगा और उसके बाद में हमारे पास में आ गया, ठीक है ऐसी ही बात है। वो शक्ति ले ली, अभी कल महाभारत के युद्ध में जरूर अर्जुन पर छोड़ूंगा और उसे मारूंगा। अब तो और अच्छा हुआ हमने कौच कुंडल से दे लिया, किंतु हमारा काम और सहज हो गया, कौच कुंडल रहने पर भी अर्जुन को माता से नहीं कोई चीज नहीं था, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आदमी ने कृष्ण को पता लगा, खुदे से चंपक को आदेश दिया इनके पुत्र को, ये जाओ अभी रात में हतोत्सव जगंती का बेटा, जाओ अभी महाभारत युद्ध कर दो, महाभारत लगा दो, रात में दुर्योधन मर जैसे तैसे मारना। वो आकर के एकदम पाणों की वर्षा करने में माया से सबको मोहित करके ऐसा करेंगे सब लोग मरे कर। अब दुर्योधन चिल्ला रहा है बचाओ 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 कर्ण बचाओ कर्ण, अब जब नहीं बचेगा तो कल लेकर के क्या करेगा, मैं मरा महाराज थोड़ा सा स्थान सना सकती भाई विधान कीजिए, आज यदि अभी बच जाते हैं अर्जुन से मुठभेड़िए, कल अर्जुन को मार सके मैं भारत युद्ध समाप्त कर दूंगा। अरे कल की कौन देखा है, अभी आज ही मर रहा, सारी सेनाएं मर रही, अभी सब प्राण नहीं आ सका, जब भी हमारी रक्षा करो। हाँ उस दिन रात को ही दिया, रात को उन्होंने कर दिया। अब क्या करें, अरे महाराज आप नहीं मान रहे तो नहीं, अभी हमको प्राण से बचाओ किस तरह से, तब यह चीज जब आपकी इच्छा है तो हो शक्ति को चलाया और शक्ति से वो गिर करके मर गया, और मरने पर कृष्ण ने रात को ही शंख बजाया कि आज प्रांतों पांडवों के और उनके प्राण कट गए, बहुत उसके बात नहीं। ऐसा कर्म दूर कर
तब आपके सिद्ध में
यदि वो मर रहा है
अर्जुन ने उसे मार डाला
अभी प्राण नहीं निकले हैं प्राणों की रक्षा कर रहा है
गदा घुमा करके कौवे और तीर से
उसी समय एक गरीब ब्राह्मण आप
जैसे देखते लाखों में से देखा जैसे यही कर्ण महाराज
महाराज मैं आपके पास आया हूँ किस लिए आया आपके पास कुछ दान की जरूरत
क्या मेरी लड़की की शादी धन के अभाव में नहीं हो रही है
वो रुक रही है
थोड़ा सा सोना मुझे मिल जाए तो मेरी लड़की की शादी हो जाए
अरे मेरे पास नहीं सोना कहाँ
मैं अभी मर रहा हूँ
महाराज आपके पास में है
आप दे सकते हैं
मैंने कहा कि अच्छा कहाँ है
अरे हमारे दो दांत सोने के बनवा रखे हैं इसमें हीरा भी लगा रखा
है इसका बहुत मूल्य हो सकता है
वो जगह तो उसी 10 लड़कियों की शादी हो जाएगी
वो गदा उठाया और
मारा और टूट गया
और उसको वो सीधे से
जड़े हुए वो सोने का दांत
कैसा सत्कर ब्राह्मणों का कैसा आदर करता है
जो बात कर देता है ये पक्की कहता
है उसकी गति क्या हुई
कृष्ण ने समझाया जो हम कहते हैं मानो मानो
तो उस कर्म का मूल्य क्या है यदि भक्ति नहीं करता ये लोगों की समझ में दिमाग में नहीं आता
सब कर्म का कोई मूल्य नहीं है यदि भजन न किया जाए
इस चीज को समझना
इसके पहले ही बताया जब क्या था तो कर्मनो लोकमनत्र कर्म बंधन तदर्थम कर्म कंतेय मुक्त संग तत्थम ये मुख्य उसमें है भगवान की प्रीति के लिए तू कर्म कर अर्पण भी नहीं तदर्थम पहले बतला कि यज्ञ के लिए अर्थात विष्णु की प्रीति के लिए कर्म कर ये यज्ञ जो कुछ भी आप भगवान की प्रीति के लिए करते हैं रसोई बनाते हैं भगवान के लिए फल लाते हैं घर में काम करते हैं ठाकुर जी के लिए अर्पण करते हैं ये सभी यज्ञ किंतु इसमें भी एक बुद्धिमानी है कुशलता है तत् अर्थम भगवान के लिए करो कर्म तब तो वो कर्म ठीक है भगवान के तरफ में ले जाएगा अन्यथा वो कर्म बंधन का कारण हो जाएगा ये कर्ण का जो जितना काम सब कर्म हुआ ये क्या हुआ तो जन्म लेना पड़ेगा करना पड़ेगा इसलिए भगवान के लिए करो और आसक्ति शून्य होकर के करो आसक्ति शून्य मैंने संसार से कर्ण कैसा था किसके लिए जिद किया अपने लिए किसके लिए अपनी आन के लिए किया अपनी नीति के लिए किया प्रभु के लिए किया इसलिए वो दुष्का कर रहा है इस चीज को समझना चाहिए बुरे कर्म की तो बात सब कर्म भी यदि अपने लिए किया जाता है नष्कर्म में अपनी अच्छी भाव वर्जितम कर्म की तो बात कर्म सब समय अपवित्र है वो संसार में डुबाएगी सब कर्म भी डुबाएगा सब कर्म मैंने क्या एक आदमी माता पिता की बहुत सेवा करता है माता के पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है इसके अतिरिक्त मैं भगवान नहीं जानता पति की सेवा ही भगवान की सेवा है इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता शास्त्र में कुछ कहानियां भी इस तरह की हैं कथाएं हैं कोई इसलिए अपने पति की सेवा कर रहा था कर रही थी और कोई व्यक्ति संसार त्याग करके कुछ ध्यान किया और ऊपर से एक कुछ कौवे ने बीत कर दिया देखा ऐसा तो वो जल गया हजाम में सिद्ध हो गया एक पति पता अपने पति की सेवा कर रही थी वो वहां पर गया भिक्षा दीजिए भिक्षा भिक्षांग देही वो बार बार कह रहा था वो सुन रही थी इशारा किया मैं कौवा नहीं हूं जब मैं चाहूंगी मैं अभी पति की सेवा कर रहा हूँ पति देवता परमेश्वर है मैं उनकी सेवा करके उठूंगा तुम वहां पर चले जाओ उनका जी कौवे की बात उन्होंने कैसी जाएंगी कौवा की तो बात अभी सूरत हुई अभी यहाँ पर आया पर उन्होंने दिया उनको भेज दिया किसी बेटे के पास वो अपने पिता की सेवा कर रहा है तो वहां भी जाकर के उसने ऐसा ही किया उनको आने में विलंब हुआ
तो उस पर भी वो क्रोधित होकर के उसके तरफ में देखा, तो उसने कहा कि मैं कौवा नहीं, तुम उसके पास नहीं जाओ। हमने इसी तरह से सब जगह घुमाया। तात्पर्य क्या, पति की सेवा ही स्त्री के लिए धर्म, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा का। ये सब चीजें क्या है, वर्णाश्रम के अंतर्गत में चित्त को सिद्ध करने के लिए पिता की सेवा ही हमारा परम धर्म है। ये बात ठीक है। अभी हम मर गए, पहले तो पिताजी मर गए, अब पिताजी की सेवा कितने दिन करेगा, क्या करेगा, श्राद्ध करेंगे? अब फिर तुम दूसरा जन्म ले लेगा तो अब नया पिता हो जाएगा, उस पिता का क्या किया, हम चक्कर में घूमते रहेंगे। इसे सत्कर्म से भी रहाई नहीं है, सत्कर्म करने पर उसका फल भोग करने के लिए नीचे फिर आना पड़ेगा। फिर संघक्लोकम विशालम सुने सुनने मत लोकम भी करती, फिर जगत में आना पड़ेगा। आप लोग हरिश्चंद्र की बात है, हरिश्चंद्र जैसा दाता कोई जगत में हुआ, सुनता कि ऐसा कोई पैदा नहीं। विश्वामित्र जी ने उनको स्वप्न में आदेश दिया, राज्य हमें दे दो। उन्होंने राज्य दे दिया, उन्होंने पूरा स्वप्न समझा। दूसरे दिन सचमुच में विश्वामित्र जी को याद है कुछ, क्या क्या याद, उन्होंने सोचा कैसे होते, मेरा आज स्वप्न था, अरे स्वप्न में कुछ किया था, अरे राज्य तो हमको दिया ना स्वप्न में, तो मुझे हाँ हाँ दिया था, तो राज्य मेरा हो गया। आप कुछ दक्षिणा दो, कितनी दक्षिणा, 500 सोने की मोहर, 1000 रुपये सोने की मोहर। मैं कहा खजान की क्या राजा, अभी खोल करके 5000 रुपया सोने की आशक्ति दे दो। मित्र कहेंगे अरे सबसे बाजी, जब राज्य हमको दे दिया तो खजाना तेरा है, तेरा नहीं है, अब ये खजाना दे। मैं क्या करूं, कभी राज्य में से किसी से पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि राजा प्रजाएं भी मेरी है। अब तुम अपना ये तुम्हारा कुछ अब नहीं है, अभी तुम है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा बेटा है, तुम हो, उनको बेच करके ही हमारा दक्षिणा दो, हमें तो नरक भोगना पड़ेगा। या करके सोचा जैसे अपने राज्य में कहीं दूसरे नहीं, यहाँ पर नहीं बेच सकते, ये तो मेरा पृथ्वी के अंदर में, ये पृथ्वी मेरी हो गई, इसके बाहर जाकर के अपने को बेच सकता हूँ, पृथ्वी के बाहर कहा गया। सुझाव दिया, अच्छा एक बात करो, काफी हमारे राज्य में नहीं है, ये बाहर में, तुम वहां पर जाकर वहां पर गए, पहले अपने बेटे को बेचा, एक ब्राह्मण से ही है निष्ठू, अपने काम कराएगा जो आज तक कभी नहीं, बर्तन मांजना पड़ेगा, घर में झाड़ू देना पड़ेगा, जो जो चाय का बर्तन मांजना पड़ेगा, जो कुछ काम करना है वो करेगा। अपने प्यारे एक लौटे बेटे को बेच दिया, कितने में, 250 में, 250 सोने के सिक्के के, केवल 1000 देना है। अपने स्त्री को बेचा 250 में, उसी ब्राह्मण है उसने दिया, हमारे घर में सब काम करना पड़ेगा, उनको बेच दिया, अपने को बेचा कहाँ, डोम के यहाँ, जो मुर्गा घाटी में कर वसूल करता था। इसलिए अपने कर्म में जो सबसे बाधिता है उसको पूरा करने के लिए, ये कर्म का ये विचार है जो बतला रहा हूँ, कर्म की गति कहाँ जाती, पहले तो कर्म देखे यहाँ तक आना था, अपने स्त्री को भी देख दिया, क्योंकि ये ममता गई जो मेरी स्त्री है और मेरा बेटा है, इस समय तक जो देखा सूर्य वंश में आया है, राम के वंश में आएंगे, इस राम के वंश को कलंक न करे कर्म मार्ग के द्वारा, इसको सुधार करने के, इस पर कृपा करनी चाहिए, इसलिए कर्म मार्ग से हटा करके भक्ति मार्ग में लाना चाहिए। ये उनका विचार, लोग इसको समझ नहीं पाए। रोहताक्ष को रात में सांप काटा, एक दिन उनकी मैया उसी ब्राह्मण के घर में, उसने बेटे को रात में अपनी गोदी में लेकर के विलाप करती थी, ब्राह्मण से कुछ पैसा मांगा जैसे कहा कर देना होगा, उसने नहीं दिया। हमने तो कल खर्च खरीदा है, अब पैसा नहीं दूंगा, कितना निष्ठुर। गुलाब करती हूँ भाई हमारे साथ में चलो, आज आदमी कोई होता तो साथ में जाता, कोई नहीं गया, अकेले दिवस होकर के चले। अंधकार रात बरसात किए हो गया, ग्यारह का समय चले, कोई घर से नहीं, कुत्ते उनके पीछे पीछे कुछ जरूर खा करके चल रहे हैं। डराना एकदम डराना स्मशान की भूमि, रात में वहां पर कोई नहीं, भूत प्रेत खेलते हैं। और उसने बेचारी अपने बेटे को लेकर के गई, सवाल से नहीं लगा कि कोई व्यक्ति आया, कौन है, क्या किस लिए आई, ये रोने रो रहे, कौन है ये सुनते ही उनका, अरे हमारे पति थे का तो ऐसी ऐसी ही स्वभाव था उनका, ऐसा कुछ समझ तो गई, बिना कर दिए किसी बेटे का या किसी व्यक्ति का मुर्दे का संस्कार यहाँ नहीं हो सकता है, पहले कर दो, कर्ज हमारे पास में देने के लिए तो कुछ है नहीं। देखा बिजली चमकी, देखा ये रोहित आज क्या खड़ा है मरा हुआ, और ये मेरी पत्नी है, और उनकी पत्नी ने देखा क्या नाम सत्य, देखा जो हमारे पति देख खड़े हैं, वो कहते आंखों में आंख आ गए, मेरी पत्नी है ममता गई, ये मेरा पुत्र मारा गया, किंतु कर्म ऐसा सब कर्म करने के लिए अपने पति से हम संकल्प के चलेंगे नहीं, राजे तुम मेरी स्त्री हो चाहे जो हो मेरा बेटा हो, फिर तो मैंने अपने को बेचा है इसलिए उसका काम हमको पूरा फर्ज करना है, इसलिए तुम कर दो करके उसने क्या किया, ये कफन नहीं या कपड़ा को फाड़े, यही फाड़ रही इसमें महाराज घर में आज आ गए, आगे भी समित्र जी आ गए, उनको तैयार, उनका तात्पर्य क्या था, संसार में जो व्यक्ति इस शरीर में मैं का भाव रख करके और कर्म करता है उसका कर्म कभी भी सिद्ध नहीं होता, उस कर्म से मुक्ति नहीं और भगवत भक्ति नहीं मिल सकती है, उसे सुख नहीं मिल सकता, इसलिए जरूरी है इतना अधिक करने की क्या जरूरत, एक बार कृष्ण नाम क्यों नहीं कर देते, मैं तेरा हूँ ऐसा क्यों नहीं कहते, सर्वधर्मान पर सज्जमान एकम शरणम भजे। आखिर में उनसे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब तुम पर मांगो, उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा ये परिस्थिति है रोहता से जी उठे हाथ रखा जी गया, उन्होंने कहा कि मैं ही वो ब्राह्मण और मैं ही ये यहाँ का डोम बना था, अब तुमको खरीदा और मैं अपने उसे संकल्प से उसे दूर कर देता हूँ, अब तुम मुक्त हो गए, साथ ही साथ में उनको स्वर्ग भेजा और रोहितार्थ को गद्दी पर बैठा दिया, उनसे कर्म मार्ग से कहाँ गए, किंतु स्वर्ग जाकर के क्या हुआ, धोती यदि स्वर्ग में भी जाएगी तो क्या करेगी, धोती समझते हैं आज क्या आदमी नहीं समझते हैं, पैर से मारो तो ऊपर उठ करके और फिर गेहूं इत्यादि को कूटती है, धोती होती है ना, नहीं समझते हैं आप लोग, चावल इत्यादि गेहूं इत्यादि को कूटते हैं, पहले ढेकी होती थी, स्त्रियां परिश्रम करती थी, उसकी लोढ़ा होता था चलाने के लिए और दाल तलने के लिए चक्की होती थी, आटा पीसने के लिए जाता होता था, अब वो सब विज्ञान चला गया, अब विज्ञान से दबा दो बस तो उससे क्या है, ब्लड प्रेशर और मोटापन, आज देखा है वहां पर मोटापन दूर करने का उपाय ना के क्या, मोटापन दूर कीजिए, पहले मोटापा दूर करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए कहते हैं जब वो गए और क्या हुआ, ते तक मुक्ता स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मत्तलोकम विषम एम श्री धर्म प्रपन्ना गदागतम, इन सब कर्मों से अधिक स्वर्ग में जाकर के अब फिर कुछ दिनों के बाद में वहां से लुढ़क जाएंगे और यहाँ करके फिर यहाँ पर गधे हुए न कुत्ते हुए न सुकर हुए न क्या हुए, कोई चीज नहीं, क्या जरूरत है इसकी, इन सबकी सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम, पहले एक कृष्ण का नाम करने से ही सब गति हो जाएगी, एक कृष्ण नाम करने से ही सब कुछ हो जाएगा,
इसलिए नाम का सहारा लीजिए। कलयुग केवल नाम अले तो भवसिंधु करो विचार से जन्म मनना। नाम लेने से भव सिंधु जाना आना मरना बुढ़ापा और कष्ट मोटापा छोटापा सब कुछ हो जाएगा। एक नाम ऐसी महाशक्तिशाली भगवत स्वरूप है। 60 वर्ष के बाद में किसी की बुद्धि का मत बुझाड़ो। माने क्या, जिसने 60 वर्ष तक एक काम को किया उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं कर्म मार्ग में इधर उधर मुक्ति में ना कहीं वो लग गई है। तो हजार उसे सिर मारो वो दीवार में सिर मारता है, उसे अभी कुछ नहीं हो। बच्चों का चित्त बहुत कोमल होता है। 50 वर्ष तक उसको कुछ शिक्षा दी जा सकती, भक्ति मार्ग में लाया जा सकता है, उसका संस्कार ऐसा होना चाहिए। वहां तक तो संस्कार दिया जा सकता है, इसके बाद में संस्कार नहीं दिया जा सकता, उसे छेड़खानी मत करो। वो कर्म करता है तो उसको कर्म ही करने दो। तो उसे जो कर्म आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, जरा इसमें एक बात कर देते हरे कृष्ण करते हुए बस इतना है। नहीं समझेंगे लाख समझाओ, घूम फर करके कहाँ आए, घूम फर करके वहीं आए। गीता का सब पढ़ लिया 18 अध्याय और घूम फर करके कृष्ण ने कहा अर्जुन को जो युद्ध करो।